मेरे बहुत 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 प्यारे साथियों, आज 15 मार्च 2016 के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 16 दिनों के लंबे गैप के बाद मुझे आप सबका स्वागत करने का सौभाग्य मिला है और निश्चित रूप से आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है और कहीं न कहीं यह भी अनुभव हो रहा है कि एक बिछोड़ने के बाद जो संयोग की स्थिति होती है वह आज बन रही है। बावजूद इसके दोस्तों कि पिछले 15 दिनों के क्लासेस के दौरान हिंदुस्तान से आए हुए इतने बड़े समूह के साथ इंटरेक्शन करने के बाद एक अलग तरह की खामोशी, एक अलग तरह की शून्यता का भी एहसास हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वह खामोशी, वह शून्यता जल्दी से फिर से एक उत्सव में तब्दील हो जाएगी। आप लोगों से बातचीत करने के दौरान, बातचीत करते हुए और निश्चित रूप से जो हमारे अभी स्टूडेंट्स रहे हैं उन सब के मेल पढ़ते हुए। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं 16 दिनों के इस लंबे गैप के बाद आज अपने सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इस दौरान बहुत से स्टूडेंट्स ने जो अभी सितंबर का बैच शुरू होने जा रहा है उसके लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। निश्चित रूप से लिस्ट लंबी है, इस दौरान 58 स्टूडेंट्स ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो मैं अपने इन सभी 58 स्टूडेंट्स का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इन सभी नौजवान साथियों के नाम हैं मंजुला कौरव जो मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं, जयकरण हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, संध्या बासफोर गुवाहाटी असम से, नवनीता सरकार आप भी गुवाहाटी असम से, सिरीन अख्तर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, अश्वनी कुमार जम्मू से, त्रिनेत्र राम तिवारी इलाहाबाद से, अजीत यादव शाहजहानपुर से, राखी तिवारी झांसी उत्तर प्रदेश से, गोविंद प्रताप सिंह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, पंकज चंदोलिया जयपुर से, कल्पना वैश्य उज्जैन मध्य प्रदेश से, नीरज राय होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, अविनाश शर्मा कानपुर उत्तर प्रदेश से, शिव कुमार चौधरी पटना बिहार से, कमलेश कुमार कमल नवादा बिहार से, पंकज कुमार न्यू दिल्ली से, देवेंद्र कुमार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, सुधाकर यादव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, अवनीश मिश्रा जौनपुर उत्तर प्रदेश से, नेहा यादव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, भेरा राम बाड़मेर राजस्थान से, रुद्र प्रताप सिंह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, मनमत दीक्षित जयपुर राजस्थान से, विभास कुमार मुंगेर बिहार से, भव्य गुप्ता मेरठ उत्तर प्रदेश से, राधे कुमार कानपुर से, जनमेजय सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से, गीता रानी दिल्ली से, अजय छिल्लर दिल्ली से, केशव अर्जुन प्रसाद सिंह मुंबई से, मुकेश कुमार शुक्ला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, पूनम सागर पटना बिहार से, हरीश कुमार कोयंबटूर से, मोहम्मद साहिद हुसैन बेगूसराय बिहार से, शुभम जैन कानपुर उत्तर प्रदेश से, रोहित कुमार मथुरा उत्तर प्रदेश से, अंजुल कुमार कौशाम्बी से, सर्वैया घनश्याम भावनगर गुजरात से, राजू कुमार चंपारण्य बिहार से, अविनाश सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से, सुबोध कुमार गया बिहार से, दीपक कुमार जहानाबाद बिहार से, महर्षि कुमार रजक बांका से, चंदन विश्वास न्यू दिल्ली से, कलीम अहमद सवाई माधोपुर से, चंद्रभूषण यादव जौनपुर उत्तर प्रदेश से, प्रीतम एच वाकड़े औरंगाबाद महाराष्ट्र से, जोगेंद्र कुमार अहिरवार टीकमगढ़ से, उपेंद्र कुमार गुप्ता बेतिया वेस्ट चंपारण्य बिहार से, जेएस यादव फतेहपुर से, गुलरेज अंसारी बेतिया वेस्ट चंपारण बिहार से, अजीत कुमार वर्मा लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश से, सौरभ वर्मा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, संजय कुमार बलोतरा से, विक्रम कुमार गया से, सुशील कुमार आप भी गया से, और पल्लवी द्विवेदी लखनऊ से। तो मित्रों, मंजुला जयकरण, संध्या नवनीता, श्रीन अश्वनी त्रिनेत्र, अजीत राखी गोविंद पंकज कल्पना नीरज अविनाश शिवकुमार कमलेश पंकज देवेंद्र सुधाकर अवनीश नेहा भेराराम रुद्र प्रताप मनमत विभाष भव्य राधे जन्मेजय गीता अजय केशव अर्जुन मुकेश पूनम हरीश मोहम्मद शाहिद शुभम रोहित अंजुल सर्वैया राजू अविनाश सुबोध दीपक महर्षि चंदन कलीम चंद्रभूषण प्रीतम जोगेंद्र उपेंद्र जेएस यादव गुलरेज अजीत सौरभ संजय विक्रम सुशील और पल्लवी। आप सभी 58 यंग फ्रेंड्स का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जिन स्टूडेंट्स के नाम लिए हैं और जिनका वेलकम किया है, मैं उनकी इस बात के लिए भी एक अलग से विशेष प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने उस दौर में अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं जबकि डेली ऑडियो अवेलेबल नहीं था, मात्र उन्हें नॉलेज सेंटर पर न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पढ़ने को मिलती होंगी। तो दोस्तों, इसे मैं आप लोगों के एक अलग तरह के एकेडमी के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास का प्रमाण मानता हूं कि डेली ऑडियो की अनुपस्थिति के बावजूद आप लोगों ने सोचा कि आप सबको सितंबर की क्लास के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लेने चाहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, दो थोड़ी दुखद सूचनाएं हैं, काफी दुखद सूचनाएं हैं। पहली सूचना तो यह है फ्रेंड्स कि जो हमारा फोर्थ बैच था, उन स्टूडेंट्स को मालूम है कि एक स्टूडेंट हमारे हैं जो कटिहार बिहार से आए हुए थे, उनके भाई को के बारे में अचानक दुर्भाग्यजनक सूचना मिली थी कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। बाद में फिर ये सूचना मिली कि उनका अभी इलाज चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली कल खबर मिली है कि विभास के जो छोटे भाई हैं वो नहीं रहे। मित्रों, हम सबके लिए सचमुच ये बहुत बहुत दुख की बात है कि सुबह ही आप लोगों को ध्यान होगा कि विभास का परिचय मैंने आप लोगों से एक अलग तरह के स्टूडेंट्स के रूप में कराया था कि ये गिटारिस्ट हैं, गिटार बजाते हैं और ये एक्टिंग भी करते हैं, ये उनकी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी थी। लेकिन आपने देखा कि उसके मात्र दो घंटे ढाई घंटे के बाद यह सूचना आ गई। मैं बहुत इस अपने सारे स्टूडेंट्स की इस बारे में प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने उनके दुख में दुख बताया, उस दुख में शामिल हुए और उनकी हर संभव सहायता की। मित्रों, एक बहुत दुखद खबर है और हम सभी, मैं आप सभी की ओर से और अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, उनके जो छोटे भाई हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने चरण में स्थान दे और साथ ही उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। मित्रों, एक दूसरी दुखद खबर यह है कि हमारे तीसरे बैच के एक स्टूडेंट हैं अखिलेश कुमार डेहरिया, उनका अभी दो तीन दिन पहले मेल आया था कि उनके पिता नहीं रहे। जो बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, 60 के आसपास ही थी और काफी कुछ स्वस्थ भी थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ईश्वर के पास उन्हें जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। मित्रों, यह भी कम दुख की बात नहीं है। जो थर्ड बैच के स्टूडेंट थे उनमें से बहुत से अखिलेश को जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हो तो एक एएफई का इतना बड़ा परिवार है, उस पूरे के पूरे परिवार की ओर से जिसमें मेरे डेली ऑडियो के समस्त श्रोता हैं, एकेडमी की पूरी टीम है, मैडम है और मैं स्वयं हूं, हम सब उस मृत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उस परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मित्रों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज है। और फ्रेंड्स, चूंकि वक्त आज वेलकम में ज्यादा लग गया है और लगना ही था, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए थे अपने स्वागत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो यह हम लोग का फर्ज बनता है कि हम उनका उसी उत्साह के साथ स्वागत करें जिस तरीके से औरों के स्वागत किए जाते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं अपने सभी फोर्थ बैच के स्टूडेंट्स और साथ ही उनके जितने भी पेरेंट्स हैं उन सब के प्रति, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की तरफ से, मैडम की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, ये आभार और धन्यवाद इसलिए क्योंकि जिस तरीके से ये क्लासेस 15 दिन की संपन्न हुई हैं, जिस अनुशासन का परिचय स्टूडेंट्स ने दिया है, जितनी भावनात्मक लगाव, श्रद्धा भाव, विश्वास का परिचय दिया है, वह फ्रेंड्स अद्भुत है था और आज भी उसकी स्मृतियां हम लोगों के दिमाग में उसी तरह से ताजी हैं मानो कि अभी क्लासेस चल रही हों। खासकर मैं जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए हैं, उनके अंदर इस तरह की भावनाएं और इस तरह के विचार डाले हैं कि वो किसी भी बात को जिसके प्रति वो कमिटेड हैं पूरे अनुशासन के साथ स्वीकार किया है। मित्रों, मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं और मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि देने वाला तो देता ही है, जो भी उसके पास है जितना है वो देगा ही, वो उड़े लेगा ही, क्योंकि देना ही उसका स्वभाव है या देने में ही उसको सुख मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वह यह कि जो लेने वाले हैं वो कैसे हैं, उनकी झोली कितनी बड़ी है, वे लेने के लिए कितने तैयार हैं। मैं फ्रेंड्स अक्सर आप लोगों से क्लास में आने से पहले एक बात कहा करता था कि आप खाली होकर आएं, आप मानसिक मजबूती के साथ आएं, आप सब अपनी पात्रता को बढ़ाकर आएं। उस समय बहुत से मेरे पास मेल आते थे कि इसका मतलब क्या है, आप बताएं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है फ्रेंड्स कि 15 दिन की क्लास अटेंड करने के बाद अब फोर्थ बैच के सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दरअसल मैं जो कह रहा था उसका अर्थ क्या था। और इस दौरान लगातार जो स्टूडेंट्स के साथ एक लाइव इंटरेक्शन होता था, जैसे ही 15 मिनट का ही गैप क्यों ना हो, स्टूडेंट्स के साथ जीवंत वार्तालाप होती थी, मैं आप सबसे घिरा रहता था, वो क्षण मुझे याद आ रहे हैं। आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, व्यक्त की गई भावनाएं, दी गई श्रद्धा, अभिव्यक्त की गई भक्ति, क्या क्या नाम मैं दूं, आज भी उन सबको सोचकर मित्रों आंखें गीली हो जाती हैं और सच पूछिए तो गला भी रुंधा आता है। मुझे लगता है कि मित्रों यही वह सबसे बड़ी ताकत है जो हमें पात्रता में परिवर्तित करती है, क्योंकि जब भावना होती है, जब भावनाएं होती हैं, जब किसी के प्रति विश्वास होता है, तो निश्चित रूप से वो जो विश्वास है, वो भावनाएं हैं, वो शब्दों को एक्सेप्ट करने की ताकत बढ़ा देती हैं, हमारे अंदर एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर देती हैं, एक ऐसी ढाल बना देती हैं कि सामने वाला कहता एक है और समझ में 11 बातें आती हैं। मित्रों, मैंने पहले ही दिन आप लोगों से यह वायदा किया था कि आप सब वह नहीं रह जाएंगे जो आप सब अभी हैं, और मैं एक कहूंगा और आप 11 समझेंगे, और इसका प्रमाण आपने सबने दिया। आप लोगों ने देखा कि मैंने पहले दिन आप लोगों को आर्टिकल देकर के कहा था कि बस आप इसे पढ़ करके और चुपचाप रख दीजिए, और फिर बाद में जब आपने 13वें दिन उस आर्टिकल को पढ़ा और मैंने ही आप लोगों से पूछा कि अब कितना समझ में आया, तो आप सबका था कि अब पहली बार आर्टिकल समझ में आया है। मित्रों, वह अब रोजाना आपके साथ होगा, जब आप अखबार पढ़ेंगे तब भी होगा, और जब आप मेरे इस डेली ऑडियो को सुनेंगे तब भी होगा। सब कुछ आपका बदल चुका है, मानस आपकी जो जगत की जो धरती थी उसका जो पूरा पर्यावरण था वो अब पूरी तरह से सिविल सर्विस के अनुकूल हो चुका है और यहां तक कि संपूर्ण जीवन के अनुकूल हो चुका है। दोस्तों अब आप लोगों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, आप सब अपने अपने घर पहुंच चुके होंगे, मेरे पास बहुत से मेल्स भी आए हैं कि वो पहुंच गए हैं, सेटल हो गए होंगे, लेकिन इस चुनौती को कभी भी मत भूलिएगा कि जो नई मिट्टी डाली गई है आप उस मिट्टी को क्षरण होने से बचाएं। आपको उस मिट्टी को बनाए रखना है, न केवल बनाए ही रखना है बल्कि उसे उपजाऊ बनाते चले जाना है और उस पर अच्छे विचारों की और सफलताओं की खेती भी करनी है। उसके लिए आपको निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ेगा और निरंतर जूझते रहना पड़ेगा। मित्रों ये जो स्ट्रगल होगा मैं समझता हूं कि पहले की तुलना में तो बड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन आसान होगा क्योंकि आपके दिमाग में एक रास्ता तैयार किया जा चुका है। जिन झाड़ झंखाड़ों से आपको रास्ता बनाना था, मुझे लगता है कि वहां अब आपको एक साफ अपना रास्ता दिखाई दे रहा होगा कि इस रास्ते से आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, चाहे फिर वो सिविल सर्विस की मंजिल हो या फिर एक बेहतर जीवन की मंजिल हो। मित्रों इसके साथ ही मैं सभी पेरेंट्स के प्रति बहुत बहुत इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि फोर्थ बैच बिना डिस्टर्बेंस के संपन्न हुआ। डिस्टर्बेंस का मतलब यह कि जो मैंने क्लास शुरू होने से पहले पेरेंट्स से अपील की थी कि वो कोशिश करें कि बच्चे पूरी तरह से स्थिर मन के साथ क्लास में रह सकें, मैंने देखा कि इस बार बच्चे जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स थे, यंग स्टूडेंट्स थे, बहुत ही स्थिर मन के साथ, बहुत ही स्थायी भाव के साथ क्लासेस अटेंड कर रहे थे। तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि यह तभी संभव हो सका है जब पेरेंट्स का बच्चों को मदद सहयोग मिला है, उनकी मदद मिली है। इसके लिए भी मैं सभी पेरेंट्स के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। दोस्तों सिलसिला शुरू हो चुका है, 16 दिन के गैप के बाद हम लोग फिर से अब इस खूबसूरत डेली ऑडियो के यात्रा पर निकल चुके हैं। रोजाना बातें होती रहेंगी, बातें बहुत हैं, उनमें हम चर्चा करते रहेंगे और डेली ऑडियो को उसी पैटर्न पर आगे बढ़ाते रहेंगे जिस पैटर्न पर यह आगे बढ़ता रहा है। और कल मैंने आप लोगों को ऑडियो फॉर एक्सलेंस प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे उसका लास्ट एपिसोड प्रस्तुत किया था और उसमें जो भी मुझे अपने कंक्लूजन्स दिए थे वो कंक्लूजन्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि वो सिर्फ मेरे कंक्लूजन्स हैं, उससे हटकर भी बहुत से लोगों के अपने अपने कंक्लूजन्स हैं, आपके अपने कंक्लूजन्स हैं, इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मेरा कंक्लूजन ही सर्वमान्य है, सर्वसत्य है, नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल संभव ही नहीं हो सकता। आप सब उन जितने भी ऑडियो फॉर एक्सीलेंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आए हुए हैं उन सबको खुले मन से सोचें, खुले मन से उन पर विचार करें, अपने अनुभवों के आधार पर उनका जायजा लें, उन कसौटियों पर कसें और उसमें से फिर जो आपको ठीक लगता है, सही लगता है, उसे उस रूप में स्वीकार करें। मित्रों सत्य किसी की भी धरोहर नहीं है, लगातार हम उस सत्य को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं और जितनी कोशिश करते हैं अचरज की बात तो यह है कि सत्य हमसे उतनी ही दूर आगे बढ़ता जाता है और फिर उसको पाने में हम भी लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। और उसी इसी तरीके से चाहे हमारे व्यक्तिगत हो, समाज हो, या देश हो, या दुनिया हो, उसका विकास हुआ है। तो मित्रों अब इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से के बाद अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। फ्रेंड्स नो डाउट कि 16 दिन तक न्यूज आते ही रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब सुनते ही रहे होंगे। मैं यहां एक बार फिर से आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा फ्रेंड्स, चाहे डेली ऑडियो आए या ना आए इसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तक आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तब तक आपको न्यूज सुननी ही सुननी चाहिए क्योंकि न्यूज तो आता ही है। मैं तो केवल उस न्यूज में थोड़ी सी वैल्यू एडिशन कर देता हूं बस, इससे हो सकता है कि थोड़ा सा आपके लिए रास्ता आसान हो जाता हो। ठीक उसी तरीके से जैसे कि यदि आप गन्ना लेकर चूसते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, जबकि आप उसी गन्ने के रस को ग्लास में लेकर पी लेते हैं तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो मैं तो केवल उस गन्ने के रस को आपको ग्लास में परोसता हूं, लेकिन गन्ना तो आ ही रहा है, इसीलिए किसी भी स्थिति में आपको न्यूज सुनने का गैप नहीं देना चाहिए। फ्रेंड्स, इस बीच में काफी इंपॉर्टेंट खबरें आती रही हैं, मैं बीच बीच में उनका उल्लेख करता रहूंगा और जो बहुत इंपॉर्टेंट रही बातें रही हैं उनको भी मैं अपने इस एनालिसिस में शामिल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी मैं पूरा यकीन करता हूं कि अब तक मेरे प्रिय श्रोताओं को इस बात का विश्वास हो गया होगा कि न्यूज उनके लिए एक तरीके का की संजीवनी है, प्रतिदिन की संजीवनी है। जैसे हम डेली सोकर उठते हैं और ताजगी महसूस करते हैं, ठीक उसी तरह से मान करके चलिए कि जैसे ही हम डेली न्यूज सुनते हैं वैसे एक तरीके से हमारे दिमाग में ताजगी भर जाती है। तो मित्रों, कुछ जो खबरें कल के न्यूज में थी सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एक दो बातों की चर्चा करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा खबरें थी भी नहीं। पहली बात तो यह कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है जो बहुत बहुत मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और यह अभी खासकर उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट अभी यूपीएससी के इंटरव्यूज में जा रहे हैं। इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, 8 मार्च से शुरू हो चुके हैं, और डेफिनेटली इंटरव्यू का जो सबसे बड़ा जो आधार होता है वो करंट अफेयर्स होते हैं, और करंट अफेयर्स का भी वो सबसे बड़ा आधार होता है जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस में चल रहे हैं, जैसे कि आरक्षण का मामला चल रहा है, जैसे कि विजय माल्या का मामला चल रहा है जिसको आप क्रोनी कैपिटलिज्म कह सकते हैं, जिसको लेकर के एक तरह से बैंकों की जो बुरी स्थिति हो गई है उसका मामला चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, लेकिन वो इंफॉर्मेटिव तरीके से नहीं पूछेंगे कि क्या है कौन है, वो उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, उस पर डिस्कशंस की सिचुएशंस आएंगी। इसीलिए आपको चाहिए कि इन सारे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट इश्यूज पर आप अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर लें, लेकिन जो आपका स्टैंड हो याद रखिए एक तो बहुत ही लॉजिकल हो और अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, अगर नहीं भी बनने जा रहे हैं तो हमारी कोई भी राय, हमारा कोई भी स्टैंड अगर वो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप मान करके चलिए कि वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से कल के न्यूज में आपने ध्यान दिया होगा जो पहली ही खबर थी कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पूरी दुनिया में विश्व मंदी छाई हुई है और भारत को इससे बचाना बहुत जरूरी है। हम इस बात को जानते थे, लेकिन अगर पार्लियामेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इस बात को कहते हैं तो ये एक बड़ी चुनौती है। यानी कि आपको पूरे के पूरे विश्व की जो आर्थिक स्थिति है, उनके मंदी के जो कारण हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ भारत इससे कैसे बच सकता है, भारत इससे बचने के लिए क्या क्या कर रहा है और क्या क्या करना चाहिए, या हमारे आर्थिक व्यवस्था में, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें ऐसी कौन सी अंतर्निहित शक्ति है, इनहेरेंट पावर है, एनर्जी है जो भारत को बार बार इस विश्व मंदी की चपेट में, बुरी तरह से चपेट में आने से बचा लेती है। ये तो नहीं कह सकते हम कि भारत इस विश्व मंदी से पूरी तरह से अप्रभावित रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2008 में जब अमेरिका में मंदी आई थी तो भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ा था, रोजगार के अवसर कम हुए थे, निर्यात कम हुए थे, एफडीआई का आना कम हो गया था, ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये कि वो इतनी बुरी तरह से चपेट में नहीं आता कि सारी चीजें ध्वस्त हो जाएं। मैं समझता हूं फ्रेंड्स कि जो भी इंडियन इकोनॉमी के बारे में तैयारी कर रहे हैं, और करना ही चाहिए, जनरल स्टडीज में तो आप तैयारी करते ही हैं, आपको भारत की जो अंतर्निहित शक्ति है इसका ज्ञान होना चाहिए जो भारत को बार बार इससे बचा लेती है। हमारा मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में जो बचत करने की आदत है वह है, हमारे महिलाओं में जो बचत करने की आदत है वह है, खासकर उनमें जो अपने गोल्ड और इन सब के प्रति जो एक मोह का भाव रहता है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे बहुत से हमारी अपनी परंपराओं और अपनी आदतों में चीजें शामिल हैं जो हमें मंदी से परेशान होने नहीं देती, यहां तक कि हमारा हमारी जो सामाजिक संरचना है जिसमें हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सहारा देकर के उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो हमारा संयुक्त परिवार की जो पद्धति है वह भी इस मंदी का के खौफनाक परिणामों का मुकाबला करने में बहुत मददगार सिद्ध होती है। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ अलग बातें बताई हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जो बात कही है कि विश्व मंदी से बचने के लिए भारत क्या क्या कर रही है, उसमें एक दो तीन चीजें उन्होंने बहुत अच्छी बताई हैं। ये लॉजिकल है, ये फैक्ट है जो आपके टिप्स पर होने चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में जो ग्रामीण बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत बनाने के लिए अधिक प्रावधान किया गया है धन का, और साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए भी अधिक उपाय किए गए, उन्होंने साफ तौर पर कहा। और यह भी बताया कि हालांकि जो रेन से पिछले दो साल से कम हुई है, लगभग 13% जो वर्षा है वो कम हुई है, लेकिन उन्होंने देश को एश्योर किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं फ्रेंड्स, हम सामान्य तौर पर इनको सुनकर उड़ा देते हैं या ध्यान नहीं देते। उन्होंने एक तरीके से देश को एश्योर किया है कि हमारे पास जो खाद्य भंडार है वो पर्याप्त है, यानी कि एक बड़ी चीज है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अगर छोटे मोटे झटके जो आ रहे हैं आएंगे ही, उन्हें संभालने के लिए हम पहले से ही सक्षम हैं, तैयार हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतने सब के बावजूद, जबकि विश्व मंदी अभी से नहीं है, लगभग 2008 से परसिस्ट कर ही रही है, अमेरिका उससे उबर चुका है, बाद में आप देखते हैं कि यूरोपीय देशों में आ गया, ग्रीस वगैरह की तो हालत बहुत ही खराब हो गई, और अभी पिछले कुछ महीनों से, लगभग 6-8 महीने से धीरे धीरे चाइना उसकी चपेट में है, लेकिन भारत उसकी चपेट में इतनी बुरी तरह से नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर आपकी बहुत ही सूक्ष्म और गहरी पकड़ होनी चाहिए, जो 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 उसकी बारीकियां हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वह भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि भारत ने, ये तो प्राय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा, इसके अतिरिक्त भी भारत काफी कुछ कर रहा है, जैसे कि किसानों के लिए एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हुई है, ठीक इसी तरह से एक राष्ट्रीय एकीकृत ग्रामीण बाजार भी आ रहा है, ताकि वो स्टेट के मंडी एक्ट से थोड़े से उनका बचाव हो सके। तो ऐसे दूसरी चीजें भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, स्पेशली ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये मान करके चलिए, खासकर अर्थशास्त्री भी यही कहते हैं कि जब तक भारत अपने कृषि विकास को अहमियत नहीं देगा, उसमें तेजी नहीं लाएगा, तब तक अर्थव्यवस्था की मजबूती लगातार संदेहास्पद बनी रहेगी। तो इस बार के बजट में उस तरह का प्रोविजन किया गया है। तो यह भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इस बार के बजट में किस तरीके से गांव की ओर चलो का बजट है। मान लीजिए कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बार का जो बजट है वो गांव की ओर चलो के नारे पर आधारित है, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे इसको सिद्ध करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद जो दूसरी खबर थी, उसमें आपने देखा कि कुछ दिनों से आप महसूस कर रहे हैं, कुछ दिनों से नहीं बदलेंगे, पिछले लगभग 8-9 महीने से कि नक्सलियों पर धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा है, स्पेशली छत्तीसगढ़ में इसके काफी प्रमाण मिल रहे हैं। हालांकि हमारे नौजवान भी दुर्भाग्यवश मुठभेड़ के शिकार होते हैं और मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, इसके बावजूद लगातार ये खबरें आने लगी हैं कि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, कभी कोई सरेंडर कर रहा है, कभी कोई सरेंडर कर रहा है, और दूसरे क्षेत्रों से भी इस तरह की खबरें मिल रही हैं। ये मैं केवल आपको एक सिम्टम्स के रूप में बता रहा हूं, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, इसका मतलब है कि अब नक्सलियों पर दबाव बढ़ रहा है, चाहे वो जिस वजह से भी हो, सरकार जो भी सुधार की योजनाएं ला रही हो, ट्रांसपोर्ट से अपने रोड सिस्टम को ठीक कर रही हो या कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक कर रही हो, जो भी इसके कारण हो, या जो हमारे नौजवान हैं उनको अच्छे हथियार दिए जा रहे हैं, ज्यादा संख्या में वहां तैनात किए जा रहे हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको मोरल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसे बहुत से रीजन है और ये सब किए जा रहे हैं, जिसके कारण अब नक्सलियों का लग रहा है कि जैसे मनोबल धीरे धीरे टूट रहा है, और ये एक बहुत अच्छा सिम्टम्स है जो हम उम्मीद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद इस बीच में दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं जिन पर हम लोग बाद में बात करेंगे, आज वक्त नहीं है। एक आप देख रहे हैं कि आरक्षण नीति को लेकर एक बार फिर से विवाद की स्थिति, विवाद नहीं कहना चाहिए, बहस की स्थिति बन गई है, वो एक इंपॉर्टेंट इशू है। और दूसरा जो है, खासकर विजय माल्या जो विदेश चले गए हैं, उससे जो क्रोनिक कैपिटलिज्म के बारे में जो बात होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर संकेत कर रहा है, इस पर हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। दोस्तों, इसी बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक पारित हुआ है, खासकर रियल इस्टेट से संबंधित धन, जो आपके जब जमीन और मकान इन सब से संबंधित विधेयक है, बहुत ही जबरदस्त विधेयक है, बहुत लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है, और आप जानते हैं कि काला धन जो ब्लैक मनी है उसका बहुत बड़ा संबंध रियल इस्टेट से है। इस पर पब्लिक स्पीक के अंतर्गत प्रोग्राम भी आना है, तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि आप इस प्रोग्राम को जरूर सुने यदि आपके लिए संभव हो तो, बाद में हम लोग फिर कभी इस विधेयक पर बात करेंगे, लेकिन इस विधेयक पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधेयक है। नो डाउट इस बीच में और भी है, आधार विधेयक का पारित होना खासकर एक धन विधेयक के रूप में एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ी बात है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, इस पर आर्टिकल्स आएंगे, एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, किसी जैसे ही अवसर मिलेगा हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस बीच घटी हुई बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में से ये सब हैं। तो मित्रों अब AIR न्यूज के बारे में इतना ही। आज के पेपर्स क्लिपिंग्स के बारे में मैं अलग से बात करने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि समय इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जुडिशरी के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा एडिटोरियल कमेंट है। प्लीज आप उस एडिटोरियल कमेंट को जरूर पढ़ें और उसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि जुडिशरी अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता जा रहा है। और वैसे भी अगर आप पिछले कुछ सालों के स्पेशली 3 सालों के अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो हर साल जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में मेंस में जुडिशरी पर एक न एक क्वेश्चन होता ही है, तो आप उसे ध्यान से पढ़ें। तो मित्रों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर और वो ईमेल का चरण है। और जैसा कि अभी मैंने एक लंबी सूची थी स्टूडेंट्स की जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनका स्वागत किया, उसी तरह से दोस्तों मेल की भी थोड़ी लंबी सूची है। लेकिन मुझे इस बात की फिर से एक बार खुशी है कि हालांकि डेली ऑडियो नहीं आ रहा है इसके बाद भी स्टूडेंट्स लगातार अपने विचारों से भावनाओं से मुझे परिचित कराते रहे हैं और मैं डेली जब भी क्लास से लौटता था एक बार मेल देखता ही देखता था। मित्रों आप लोग बिल्कुल ये न सोचें कि मेल मैं नहीं देखता हूं या अधिक मेल होंगे तो नहीं देखता हूं, ये आप लोग जिस विश्वास के साथ मेल लिखते हैं मेरा यह धर्म बनता है कि मैं आपके उस विश्वास को बनाए रखूं। हां यह बात जरूर है कि बहुत से मेल आते हैं और उन सभी के नाम मैं शामिल नहीं कर पाता। तो मित्रों कुछ स्टूडेंट्स के नाम मैं शामिल कर रहा हूं, वो हैं हरिचरण कैवर्त, लवी शर्मा, विलास इंगले, अबू रैहन, ओपी जाट अजमेर से, दिव्यांशु शेखर पटना से, अंशिता राम बोल यादव, लव कुमार इंदौर से, वरुण पांडे इलाहाबाद से, अजित कुमार महतो, सत्यम स्वर्णकार, पवन कुमार बक्सर बिहार से, मधु गौतम यमुनानगर हरियाणा से, रविकांत दीक्षित मेरठ से, दीपक सिंह देहरादून से, योगेश जांगिड़ दिल्ली से, किशोर केशव मिश्रा, विवेक कुमार, अभिषेक सोनी, कृपेश पटेल, वरुण सारस्वत मुजफ्फरनगर से, तेरेसा अलेक्जेंडर, दुष्यंत निमोदा सीहोर से, रजत कुमार बोलपुर से, सायाली तारालकर, कृष्ण भाटिया रुरान वली से और अमिता सिंह भोपाल से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार और उन सब के प्रति भी बहुत बहुत आभार और उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेल लिखे लेकिन उनके नाम मैं शामिल नहीं कर पाया हूं। दोस्तों फिर मेल का एक दूसरा हिस्सा वह है जो स्टूडेंट्स अभी आए क्लास उन्होंने अटेंड की और अटेंड करने के बाद जब वो लौटे तो उन्होंने अपने मेल लिखे हैं। इनके मेल की जो एक अलग तरीके का जो एक करेक्टर है और वो ये है कि सभी ने अपने मेल में क्लासेस में उन्होंने जो सीखा है उसकी बात की है, क्लासेस में जो कुछ हुआ है उसकी बात की है और अपनी भावनाओं और अपने विचारों को व्यक्त किया है। निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों ने क्लासेस के बारे में जो कुछ भी कहा है उन सब को पढ़कर सच पूछिए तो मैं बेहद अभिभूत हो गया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा है, अच्छा लगना स्वाभाविक ही है कि क्योंकि जब भी आप कुछ करते हैं और उस करने के अच्छे परिणाम आते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं अपने सभी 4th बैच के प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इनमें से एक मित्र हैं अंकित कुमार झज्जर से जिन्होंने लिखा है कि जो 2 स्टूडेंट क्लास में आए थे उन्होंने उनको बहुत प्रभावित किया है और स्पेशली कहा है कि मैं उनकी भावनाओं को उन स्टूडेंट्स तक पहुंचा दूं। एक हमारे हैं किस्मुद्दीन, इनके बारे में मैं बाद में भी कभी चर्चा करूंगा, बहुत ही हंसमुख और ऊर्जावान व्यक्ति बावजूद इसके कि वो चलने में समर्थ नहीं थे, उनसे अंकित बहुत प्रभावित हुए हैं। और दूसरा उन्होंने नाम लिया है सुमन का, खासकर उनके पास एक चांस बचा हुआ है, बीच में वो पढ़ाई छोड़ चुकी थी इसके बावजूद पूरे दमखम के साथ अभी वो अपनी तैयारी में लगी हुई है और यहां भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ वे क्लासेस अटेंड कर रही थी। तो उन्होंने लिखा है अंकित ने कि इन दोनों से मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ। इसके बाद एक मेल है मेरे पास पूजा राजपूत का जो प्रतापगढ़ से हैं, उन्होंने जो मेल लिखा है, पूजा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी भावनाओं के लिए और निश्चित रूप से मुझे पूरा यकीन है कि एकेडमी के प्रति, मेरे प्रति, एकेडमी की टीम के प्रति, सबके प्रति जो तुम्हारी इतनी गहरी भावनाएं हैं निश्चित रूप से ये भावनाएं तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएंगी और तुम्हें सफलता तक पहुंचाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मित्रों, इसमें भी मैं सभी स्टूडेंट्स के नाम शामिल नहीं कर सका हूं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कुछ और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मैं नाम शामिल कर रहा हूं, वे हैं सुधांशु अग्रवाल विदिशा से, भगवान सिंह रिवाड़ी हरियाणा से, रवि तिवारी सासाराम से, नवीन दुबे, रानी कुंभकार भोपाल से, हरि ओम तिवारी इलाहाबाद से, सावर मल मीना टोंक राजस्थान से और एकांकी अग्रिहोत्री, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं अभी भी उस खालीपन का एहसास कर रहा हूं जो खालीपन आप सबके जाने के कारण हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो खालीपन भरेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में आप लोगों ने तीसरे चौथे दिन ही ये पढ़ा है कि जब कहीं खाली होता है तो हवाएं जो अधिक दबाव वाली होती हैं इस खाली कम दबाव क्षेत्र की ओर चलती हैं और वहां बारिश करती हैं, ये भी भरेगा और बारिश होगी। मित्रों, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और स्पेशली फोर्थ बैच के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के प्रति बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बैच को इतने खूबसूरत तरीके से सफल बनाया। और दोस्तों, इसी के साथ ही मैं अब आज के अपने इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूं, डेली ऑडियो को। फिर मुलाकात होगी और हम फिर ढेर सारी बातें करेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।